بالکل جو ہم نے پڑھا تھا سورہ یاسین میں بھی, ہمارے آثار ہم جو چھوڑ جاتے ہیں. جی
میرے تین پوائنٹ تو یہ تھے
بالکل. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے جہنم میں, عمر ابن لوہائی,
کیونکہ
شرک بہت بڑا گناہ ہے نا. اس لیے جیسے ہم اپنے ماں باپ کی شکلیں تھوڑی دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت حسین بنایا تھا, لیکن اصل بات جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. کہ جو جابر بن سمرہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا چودھویں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بھی زیادہ حسین نظر آ رہے ہیں, وہ کیا تھا؟ محبت. اتنی زیادہ محبت ہونا, یہ تو یہ چیز ظاہر ہے ان کی طرف سے. جو انہوں نے یہ پوائنٹ کیا اسی کی طرف میں آنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور اس کے لیے قریش کو یہاں پہ لا کے بسایا گیا ہے اور کیسے ان کو جمع کیا گیا ہے اور کیسے یہ کام ان کے سپرد کیے گئے ہیں. آج ہم اور اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ زمزم تو کھو گیا, 300 ایئرز ہو گئے زمزم نہیں مل رہا. زمزم وہ پرانے زمانے میں کوئی سیٹلائٹ تو تھے نہیں, کوئی وہ چیزیں تو تھی نہیں کہ کہاں پہ پانی ہے تو پتا چل جاتا. اب وہ اٹ واز لاسٹ, تو وہ کیسے ملا, وہ کیسے واپس آیا, وہ بھی سارا ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نام ہیں جن کا جو یہاں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں نسب نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں سوچ رہی تھی کبھی ان لوگوں نے شاید سوچا بھی نہ ہو کہ ہمارا نام 1400 سال بعد کوئی لوگ یاد کرنے کی اتنی کوشش کر رہے ہوں گے اتنی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ایک اس نبی کی برکت ہے کہ دیکھو کہاں تک سبحان اللہ یہ برکتیں جاری ہیں کہ پشتوں تک کہ ان کے نام آج ہم یاد کتابوں میں ہیں, تبھی ان کے نام بھلائے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کے جو جد امجد ہیں. اور اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پام بنایا ہے. ہاں یاد کیسے کرنا ہے اس کو میں ابھی بتا رہی ہوں. یہ پام آپ اپنے رائٹ ہینڈ کو ڈرا کر لیں. اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے صحیح لکھے ہیں کہ نہیں لکھے یہ نام, صحیح لکھے ہیں. چلیں آنٹی نے چلیے تو صحیح لکھے. اچھا اب یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں ہیں یہ ساری, ٹھیک ہے. اب آپ یہ چھوٹی انگلی سے رائٹ ہینڈ سے چھوٹی انگلی سے اسٹارٹ کرتے ہیں, تو اب مجھے اس طرح یاد ہے کہ یہاں پہ کس کا نام ہے, یہاں پہ کس کا نام ہے, یہاں پہ کس کا نام ہے, اس طرح یاد ہے مجھے, ٹھیک ہے. تو یعنی جو لوگ سن رہے ہیں اس سے, یعنی ہر انگلی پہ مجھے یاد ہے کہ انگلی کی جو لائنیں ہیں تین لائنیں, اس میں اس جگہ پہ کس کا نام آ رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب بن ہاشم, یہاں تک تو ہمیں کافی لوگوں کو یاد ہی ہے, رائٹ. عبدالمطلب تک تو یاد ہے. آگے اس انگلی کی طور پہ ہاشم, अच्छा उसके बाद तीन नामों को एक साथ याद करना, मतलब बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब, बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब, बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब, इस तरह से आपने कम से कम 20 दफा ये बात बोले। फिर अगली उंगली पे चले गए, बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई, 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 इस तरह बोलते जाना। फिर अगली उंगली पे जाए जो लास्ट उंगली है शहादत की, बिन वालिद, वालिद नाम हमारे यहाँ भी शायद का नाम होता था, तो ये थोड़ा सा नाम मिलता जुलता थोड़ा सा आसान है हमारे लिए याद करना। बिन फहर बिन मालिक, मालिक भी इतना मुश्किल नहीं है ना। अब जब हम अंगूठे पे आए, बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा, ठीक है, बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा, ये हम 10-20 दफा ये बात बोलेंगे। फिर अगले हाथ की अंगूठे पे, अब मैंने तो जहाँ पे किया मैंने वही ड्रॉ कर दिया, अब आप लोग अपना देख लें कि आपने जहाँ पे करना। तो जब आप अंगूठे पे आए तो बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर, और फिर एंड में बिन निजार बिन आद बिन अदनान, अदनान नाम भी हमारे अंदर होता है इसलिए आसान है। तो यहाँ तक ये 7 उंगलियों को आपने याद करना है, बस 7 उंगलियों में देखने, एक एक उंगली को एक एक दिन याद करें, एक हफ्ते में सब हो जाते हैं, ठीक है। एक हफ्ते में पहली उंगली तो आपको ऑलरेडी याद है, बाकी ये और ये उंगलियां 7 दिनों में आपने 7 उंगलियां याद करनी है, बस ये याद रखें और सारा दिन बोलते रहे वो तीन नाम बस बोलने, क्योंकि जब आपको ये नाम आ गया ना, मतलब अब्द मनाफ आ गया तो आगे फौरन आपके मुंह से खुद बहुत निकल, क्योंकि आपने तीन नाम एक साथ याद किए हैं, अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब। अच्छा अब आप लोग 5-5 दफा सब ऊंची आवाज में बोलेंगे, फर्स्ट फिंगर को बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन हाशिम, बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन हाशिम, बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन हाशिम, बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन, सही बिन किला। अगली उंगली पे जाएं, बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई, बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई, ऊंची आवाज में क्या बात हो रही, बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई, बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई, बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई। अब नेक्स्ट फोर्थ फिंगर पे जाएं, बिन गालिब बिन सहर बिन मालिक, बिन गालिब बिन सहर बिन मालिक, बिन वालिद बिन सहर बिन मालिक, बिन वालिद बिन सहर बिन मालिक। अगली उंगली पे जाएं, बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा, 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 बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा। अब हम पे चले जाएं, बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुद्र, बिन आगे बिन बिन निजार बिन माद बिन अदनान, वहाँ तक पहुँच गए हम, हाँ मीम दौदरा,
बिन नजर बिन मुआद बिन अदनान,
कहाँ तक पहुँचे,
बिन नजर बिन मुआद बिन
अदनान, बिन निजार बिन मुआद बिन अदनान, लास्ट में आप, बिन निजार बिन मुआद बिन अदनान, सब ऊंची आवाज में बोले, लिखिए नहीं अभी, आप एंड में लिख लीजिएगा, बिन निजार बिन मुआद बिन अदनान, बिन निजार बिन मुआद बिन अदनान, बिन निजार बिन मुआद बिन अदनान, बिन निजार बिन मुआद बिन अदनान। अब इसका आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, अपने ड्रॉ करें और इस तरह से लिख लें, ये तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, वो ही देख के और उनको नोट डाउन करना है, इस तरह आप चाहे ऊपर से नीचे चले जाए नीचे से ऊपर, ये तो मैंने अपना जो जिस तरह से मैंने याद किया था मैंने वो आपको आइडिया बता दिया, जो आप लोगों की मर्जी, ये इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, देखे ये तो मैंने जो मुझे इजी चीज लगती थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली, अगर आपको कोई और तरीका इजी लगता है तो आप बेशक उससे कर लीजिए। हाँ ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि इन्होंने कुसई के बाद हकीम नाम लिखा, लेकिन ये उन्हीं का नाम था, हकीम भी उन्हीं का लकब था कुसई का जी। ठीक है चले, और ये 21 नेम्स है ना, तो ये 7 उंगलियां, इनके ऊपर 21 नेम्स आ गए। ठीक है, अब इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी ना आप लोगों को। तो सीरतुल नबी को इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे जैसे 5 पार्ट्स में, अगर आप डिवाइड कर लें इसको 5 पार्ट्स में सीरतुल नबी को, जी सीरतुल नबी को अगर 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लें, तो फर्स्ट पार्ट हम जो इस वक्त देख रहे हैं वो बचपन से आपका 25 ईयर्स ऑफ एज तक है। ठीक है, फिर बाज लोग इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं, जैसे नबूवत से पहले का जमाना, नबूवत के बाद की मक्की जिंदगी और नबूवत के बाद की मदनी जिंदगी, लेकिन वो बहुत ब्रॉड हो जाता है इसलिए मैंने इसको जरा थोड़ा सा और प्रिसाइज कर दिया कि अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करें बचपन से लेके 25 ईयर्स की एज तक, नंबर 2 25 ईयर्स से 40 ईयर्स तक की एज तक जिसमें शादी है, औलाद है, नबूवत है, नबूवत का मिलना 25 to 40। अच्छा, फिर आपकी 40 से लेके 53 ईयर्स ऑफ एज तक की जो जिंदगी है मक्की जिंदगी नबूवत के बाद की। ठीक है, फिर नंबर 4 53 से लेके 61 ईयर्स तक फतह मक्का तक मदनी जिंदगी, फिर 61 टू 63 ईयर्स ऑफ एज तक हज्जतुल विदा और वफात। पहली है बचपन से 25 ईयर्स, दूसरी है 25 to 40 ईयर्स, तीसरी है 40 to 53 ईयर, चौथी है 53 to 61 ईयर, और लास्ट वन है 61 to 63 ईयर, जिसमें दो ही जो बातें हम कवर करेंगे हज्जतुल विदा और वफात। तो इस तरह से इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे। जी चलें जी, अब किताब निकाल लें। अब किताब सबके पास होनी चाहिए, देखिए इसलिए कि किताब के साथ जरा आप लोगों को घर में भी पढ़ने में आसानी होगी। वैसे ऑनलाइन भी किताब है, अगर आप लोग ऑनलाइन देखना चाहें ऑनलाइन इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी।
और जब तक
अच्छा
इंशाल्लाह
ओके, और कितनी वो डोनेट करेंगे ये भी बता दें। तो एंड में ये आप लोग काम करिएगा, ठीक है इंशाल्लाह होगा जी। अच्छा मुझे नहीं पता बुक का, लेकिन आप लोग बाहर क्या इन द एंड ये हम बात करेंगे, अभी हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी, हाँ अभी तो मैंने आपसे सवाल ही नहीं पूछे ना, ये तो आपने याद नहीं कराया फिर यही। अब आप बंद कर दें किताबें और नोट्स बंद कर दें। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, मुझे ये बताएं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कौन सा वो कबीला था कि जिसने आके वहाँ पे टेक ओवर किया था। अजीब आप बताइए। अच्छा टेक ओवर जिन्होंने किया, जिन्होंने टेक ओवर किया था इस्माइल। अच्छा चलें आपकी बात भी सही मान लेते हैं कि जुर्हम कबीला वहाँ पे आके आबाद हुआ। ठीक है, जुर्हम के साथ किसने लड़ाई की थी, जंग की थी और उनको वहां से निकाल दिया था। बनु खुजा शाबाश। जो हमने जाते वक्त क्या काम किया था, हाँ उसको शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर दोबारा वापस कुरैश, अच्छा कुरैश उस वक्त थे कहाँ जी, क्यों उनको वहाँ पे क्यों मक्का में क्यों नहीं उनकी उनकी लीडरशिप थी,
इसलिए कि उनमें लीडिंग पावर नहीं,
हाँ क्वालिटीज नहीं थी, बिल्कुल उनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं थी, तो इसलिए जो हम कबीले ने ही टेक ओवर कर लिया था उनसे। ठीक है, और जब उनसे लड़ने के लिए कौन आए थे, बनु सुजा जैसे उन्होंने बताया, और जो हम कबीला कहाँ चला गया था वापस, यमन चला गया। अब आप लोग हाथ खड़ा करेंगे ताकि मुझे पता चले किन लोगों ने सही से पढ़ा है। अच्छा फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, 12 बेटे जी, 2 बेटे थे उनके, 12 बेटे थे बिल्कुल। अच्छा जी ये बताएंगे कि कितने साल तक यहाँ पे हुकूमत रही थी जुर्हम कबीले की, 2100 ईयर 2100 साल तक हुकूमत रही थी जी 2100 ईयर तक उनकी हुकूमत रही थी। उसके बाद बनू कुज़ा आए थे। और कौन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे फैमिली ट्री में वो कौन काबिले जिक्र नाम है जिन्होंने आके हिस्ट्री को चेंज किया? इरम हुसैन बिन किलाब। तो हम पूरा नाम लेंगे, उनका नाम पूरा है हुसैन बिन किलाब। हुसैन बिन किलाब दो नाम तो आपको यही याद हो जाएंगे। और इनका इनके कारनामे क्या थे, इनके बड़े कारनामे क्या थे? कोई और बताए आप? हाँ जी आप बताए।
सबसे पहले तो उन्होंने कुरैश को मेन मक्के में आबाद किया, तो और हाजियों को करते थे।
उनके लिए बल्कि घर बनवाए, जो कुरैश के लोग थे ना उनके लिए घर बनवाए थे जी। और क्या किया था?
हाजियों को खिदमत करते थे,
यानी हाजियों के लिए पहले भी मेजबानी का इंतजाम था लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं था जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज थी जो कि बहुत यानी जो आप कह सकते हैं कि ज्यादा पैसे कलेक्ट किए पूरी अपनी ट्राइब से और उनके लिए खाना खिलाते थे और वो था उनका सारा इंतजाम करते थे। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि सभी कहते हैं आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त तक सब कहते थे कि हम दीन इब्राहिमी पे हैं। और दीन इब्राहिमी क्या था? तौहीद। इतना अरसा रही थी ना यहाँ पे तो सब अल्लाह को जानते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं जानते थे। इसीलिए तो अमर बिन लोई ने जब आके ये बुत परस्ती शुरू की तो उससे पहले क्या दीन चल रहा? तौहीद थी। सब जो चीजें मिल जी जी। अच्छा अब जो हुसैन के बेटे थे उनके नाम क्या थे? कौन कुसुम आप बताएंगी? हाँ जी यहाँ पे क्या नहीं स्लाइड तो बंद करते और कौन बताएगा? हाँ जी बताएं। हाँ और दूसरा ठीक है अब्दुद्दार और अब्दे मनाफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहाँ से वो चलती है चीज अब्दे मनाफ। लेकिन इनके एक और बेटे भी थे जिनका नाम था अब्दुल उज्जा। ये याद रखिएगा वो उन्हीं की औलाद में से कुवैलिद और उनकी बेटी हजरत खदीजा थी। ठीक है तो आप ये फैमिली ट्री में वहाँ पे थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं। हजरत खदीजा इन्हीं की औलाद में से आती है। आप जब हुसैन बिन किलाब लिखेंगे ना तो उनके तीन बेटे लिख के अब्दुद्दार अब्दे मनाफ। अब्दे मनाफ की जनरेशन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और थर्ड उनके सन थे अब्दुल उज्जा जिनकी जनरेशन में आके खुवैलिद हैं और उनकी बेटी हैं हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद। जी जी अच्छा फिर हुसैन ने यहाँ पे आके हुकूमत कैसे की आप बताएंगी रसिया? कैसे उन्होंने यहाँ पे हुसैन ने टेक ओवर कैसे किया मक्का पे जब इन लोगों को तो बाहर निकाल दिया गया था? जी आप बताए। राइट राइट रेस ओवर देयर। हाँ और उससे पहले क्या हुआ था कि बनू खुज़ा का जो सरदार था उसकी बेटी से शादी इनकी हुई हुसैन। हाँ मैंने आपको लास्ट टाइम बनाया था। नहीं हुसैन बिन किलाब की शादी किसके साथ हुई? बनू खुज़ा जो लीडर थे या जिनके पास हुकूमत थी मक्का की उनका जो सरदार था उसकी बेटी के साथ हुसैन बिन किलाब की शादी हुई। तो तभी तो ईजी हो गया ना। तभी तो बाद में जब वो आदमी मरा तो उसके बाद क्या हुआ कि अब किसके पास हुकूमत जाएगी? तो बनू खुज़ा अपनी तरफ करना चाहते थे जबकि इन्होंने कहा कि हमारा राइट है। तब जंग हुई और फिर देन ही टुक ओवर। और इनके बड़े बड़े कारनामों में एक्चुअली हिस्ट्री ज्यादातर फिर यहाँ से स्टार्ट होती है क्योंकि यहाँ पे अब मक्का में आके ये लोग अब बसे हैं। अदरवाइज तो पहले बिल्कुल स्कैटर्ड थे ना। इनका बहुत बड़ा कारनामा है ये कि उन लोगों को मक्का मिलाना है क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी को अब भेजना है तो उससे पहले वो सारी चीजें तैयार हो रही हैं। ठीक है अच्छा जी और क्या सवाल आपसे हो सकता है?